बोली हनुमंत लाल की, बोली रामचंद्र भगवान की। हाँ तो श्रोता बंधुओं, प्रभु ने अपने हाथों से गिरिराज जटायु का अंतिम संस्कार किया और वहां से राम और लक्ष्मण दोनों भाई आगे चल देते हैं। पुत्तू भाई, जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम, जब तक कवियों का है समाज, जब तक कवियों का है समाज, तब तक बस अजर अमर हो तुम। श्रोता बंधुओं, आज प्रभु राम और लक्ष्मण आपस में बातें करते जा रहे हैं कि देखो, सब संस्कारों का फल होता है, गीत जन्म लेकर के भी, और देखिए इसके अंदर कितनी परोपकार की भावना थी। श्रोता बंधुओं, एक बात याद रखें, परोपकारी हमेशा परोपकारी होता है। परोपकारियों का काम है अपने स्वार्थ को छोड़कर संसार का भला करना। जैसे वृक्ष कबहू नहीं फल भकै और नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धर्यो शरीर। क्या वृक्ष कभी अपने फल अपने आप खाते हैं? ना। और देखिए परोपकारियों का परोपकार कि वृक्ष के अंदर जब आप ढेला मारते हैं या लकड़ी मारते हैं तो उसके बदले में वृक्ष आपको लकड़ी नहीं मारता, आप जब उसको ढेला मारते हैं तो वो उसके बदले में आपको आम के फल देता है या अपने फल देता है। नदी को आप देखिए, नदी क्या अपना पानी अपने आप पीती है? ना, संसार उसमें पानी पीता है। तो श्रोता बंधुओं, कोई भी व्यक्ति अपना वास्तविक स्वभाव नहीं खोता। जैसे संत का काम है हमेशा दया करना और बिच्छू का काम है डंक मारना। अभिलाष सिंह भैया, बिच्छू का काम है डंक मारना और संत का काम है दया करना। संत हृदय, बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है? बिल्कुल नवनीत, मक्खन पराग का मक्खन सने कदे मुलायम, देखो दाल में डालो फराग से पिघल जाता है। उसी प्रकार से संत का हृदय मक्खन होता है मुलायम, क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा, यानी पल मात्र में क्रोधित हो जाना और पल मात्र में प्रसन्न हो जाना, ये संत के लक्षण है। एक संत जो था वो स्नान कर रहा था एक तालाब में, मेरे श्रोता बंधुओं, तो स्नान करते करते क्या हुआ, एक बिच्छू कहीं से आया और उस तालाब में गिर गया। तो अब संत ने देखा, रे बेचारा ये बिच्छू पानी में डूब जाएगा, मर जाएगा। उनको दया आ गई, उन्होंने क्या किया, उस बिच्छू को उठाया और उठाने के बाद हाथ में लेकर चाहा कि इसको लेकर पानी के किनारे डाल दें। जैसे ही उसको उठाया और चाहा कि आगे ले चलें, बिच्छू ने मारा डंक संत के, संत तिलमिला गए बेचारे, छोड़ दिया। फिर देखा कि वो फिर बहने लगा, संत को फिर दया आ गई, संत ने फिर उसे उठाया, उसने बिच्छू ने फिर डंक मारा, संत फिर बेचारे तिलमिला गए, फिर छोड़ दिया। लास्ट में यानी अंत में आया क्रोध संत जी ने, पकड़ा बिच्छू को मुट्ठी दावे रहे और जाके बाहर छोड़ दिया। ये करिश्मा एक कोई भैया सामने चौधरी खड़ा था, वो देख रहा था। उसने कहा ए भैया, चौधरी कहने लगा ए भैया संत जी एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा था तो आप इसको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे थे? संत मुस्कराया, अरे भाई चौधरी जी, ना मैं इसको बचा रहा था और ना ही ये मुझको डंक मार रहा था। हम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। का मतलब? का देखो भाई, संत की ड्यूटी है, संत का काम है दया करना, मैं दया कर रहा था, उसको बचा रहा था, और बिच्छू की ड्यूटी है डंक मारना, ये अपना डंक मार रहा था। अब वो बात अलग थी कि ये अपनी ड्यूटी में अधूरा रह गया और इसकी ड्यूटी पर मेरी ड्यूटी हावी हो गई, यानी मैंने इसको बचा लिया। तो भैया ये मुझे काट नहीं रहा था, ये अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा था, ये डंक मार रहा था और मैं इसे बचा रहा था। तो श्रोता बंधुओं, जो जिसकी ड्यूटी होती है वो अपनी ड्यूटी का पालन करता है। आज यही विचार करते हुए भगवान श्री राम चले जा रहे हैं। विचार करते करते प्रभु आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए? भगतों के बस में हो भगवान, शिवरी घर आए। भगवान शिवरी घर आए, श्री राम शिवरी घर आए। भगतों के बस में हो भगवान, शिवरी घर आए। तो शिवरी ने क्या किया? फूस की चटैया शिवरी झाड़ी के बिछावेली, फूस की चटैया रे शिवरी झाड़ी के बिछावेली। असना 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 लगावे अपने राम, शिवजी घर आए। भगतों के बस में हो भगवान, शिवजी घर आए। भगवान शिवजी घर आए, शिवरी घर आए। भगतों के बस में वो भगवान, शिवरी घर आए। छोटे मोटे लोटा रे शिवरी जल भर के लावेली, छोटे मोटे लोटा शिवरी जल भर के लावेली। पनिया पिलावे अपने राम, शिवरी घर आए। राम श्री राम। भक्तों के बस में वो भगवान श्री घर आए, आज प्रभु राम शिवरी के यहाँ चले आ रहे हैं। शिवरी भीलनी ये एक जात हुआ करती थी, सबरी या भीलनी कहिए, ये एक किस्म की जात हुआ करती थी। भैया पता नहीं कितने युगों से बेचारी ये सबरी, अरे ये भीलनी अयोध्यापति प्रभु राम का दर्शन करने के लिए लालसा लगाए बैठी है। हमारे अनेकानेक विद्वानों का मत है कि एक मतंग ऋषि थे, मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि वन में प्रभु का भजन किया करते थे। उनके अनेकानेक शिष्य थे। मतंग ऋषि के जब बहुत सारे शिष्य थे और शिष्यों का काम यह हुआ करता था कि अपने गुरु की सेवा करना। देखो भैया अब तो जमाना बदल गया, पहले गुरु और शिष्य का बड़ा प्यारा नाता हुआ करता था। कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी उन गुरुन की जिन गोविंदियो बताए। गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। गुरु, गुरु का मतलब गुह माने अंधकार और रूह माने प्रकाश। जो हृदय के अंधकार को निकालकर उसमें प्रकाश भर दे वही गुरु है। और गुरु तीन प्रकार के होते हैं, अभिलाष सिंह जी आपके सुनने वाली बात है। गुरु तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कुल गुरु, एक होता है दीक्षा गुरु और तीसरा होता है शिक्षा गुरु। भगवान राम ने तीनों गुरु किए थे। जितने भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई अपना गुरु जरूर बनाया। भगवान राम के तीन गुरु थे, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, कुल गुरु। भगवान राम के दीक्षा गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी। शिक्षा गुरु कौन थे? विश्वामित्र। दीक्षा गुरु थे वाल्मीकि और कुल गुरु थे महाराज वशिष्ठ जी। शिक्षा गुरु का मतलब ये होता है जिससे मनुष्य को ज्ञान मिल जाए, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वो शिक्षा गुरु होता है। और शिक्षा गुरु कोई ये जरूरी नहीं कि एक ही हो। दत्तात्रेय जी ने 27 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने देखा कि आसमान में चील उड़ती हुई जा रही है और उसके मुख में मांस का टुकड़ा है। बस दत्तात्रेय जी ने चील को अपना गुरु मान लिया कि अरे जैसे ये चील इस मांस के लोथड़े में अपने मन को फंसाए उड़ती जा रही है, उसी प्रकार से ये जीव इस माया में फंस करके मारा मारा भ्रमण करता है, घूमता है। तो शिक्षा गुरु एक नहीं होता, जिससे भी ज्ञान मिल जाए वो शिक्षा गुरु ही हो जाता है। दीक्षा गुरु एक होता है जो परमार्थ का ठेकेदार बनता है, यानी जो कान फूंकता है वो आपका हुआ दीक्षा गुरु। और एक होता है कुल गुरु। अब तो जमाना बदल गया, पता लगा पंडित जी नहीं मिले सत्यनारायण की कथा बांचने वाले तो दूसरे पंडित जी को बुला लाओ चौधरी जी। अब तो कोई नियम नहीं रह गया ना भैया। पहले जानते क्या हुआ करता था? पहले घर में शादी बारात विवाह सत्यनारायण की कथा या जो भी कार्य होता था वो एक ही ब्राह्मण बुलाया जाता था। अगर वो नहीं आता तो वो कार्य रोक दिया जाता। कुलगुरु नहीं होता तो शादी रुक जाती। कुलगुरु कह देता आज मुहूर्त नहीं है तो शादी नहीं होती, मुहूर्त के हिसाब से ही होती। अब तो जमाना बदल गया, कुल गुरु नहीं मिलेंगे तो दूसरे गुरु कहेंगे कोई बात नहीं हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कुल गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी जरूरत ही क्या है। लेकिन श्रोता बंधुओं ऐसा नहीं था। राम के युग में गुरु और शिष्य की मर्यादा थी। पहले गुरु शिष्य से कह देते थे भैया राम शरण कि तुम्हें खड़े रहना है, तो भैया शिष्य खड़े रहते थे। और आजकल मालूम है, आजकल भैया शिष्य कैसे हैं, उनका बस चले तो गुरु महाराज को भी बेच खाएं, उनके भगवान बेच खाएं। एक गुरुजी एक चेले को शालिग्राम दे गए और बोले, भैया प्रेमचंद कि हम जरा वृंदावन जा रहे हैं, जरा हमारे भगवान जो हैं इनकी देखरेख कर लेना। चेले ने कहा ठीक। गुरुजी चले गए। एक आध महीने के बाद चेले को कुछ पैसे की पड़ गई जरूरत, उसके पास क्या रखा फक्कड़ बाबा, पड़ोस में पहुंचा, बोला भैया 5 रुपए दे दे। उसने कहा मैं क्यों 5 रुपए दे दूं, तू फक्कड़ बाबा मुझे क्या देगा। तो बोला मेरे पास शालिग्राम है। बोले तुम दे दे शालिग्राम, दे दे 5 रुपए के, 5 रुपए का सामान ले जा, अपने शालिग्राम दे जा। चेले ने मारे भूख के वो शालिग्राम बेच डाले गुरु महाराज के 5 रुपए में, बेच के खा गया। जब गुरु महाराज आए, चेले ने गुरु जी की पूजा की, गुरु ने कहा लाओ बेटा चेला हमारे शालिग्राम ले आओ। अब चेला बेचारा क्या करे, कहां से लाए शालिग्राम, बड़ा चालाक था, होनहार चेला था भैया। जामुन की फसल चल रही थी, काले काला जामुन होता है और काले काले शालिग्राम होते हैं। एक छोटे से पत्ते पे एक बड़ा सा जामुन तोड़ के लाया और कहा लो गुरु महाराज अपने शालिग्राम लो। गुरु ने देखा, कहा बेटा होनहार शिष्य, कहा हाँ गुरु गुरुदेव, कहा ये तुम्हारे शालिग्राम कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। कहा गुरुजी बदले क्यों नहीं आएंगे, राठौर साहब के यहाँ रिकॉर्डिंग कराने गए थे, खूब मक्खन खिलाया है, खा खा के मोटे हो गए हैं, आपके जैसे भूखे थोड़ी रखा है। कहा फिर क्या, तभी मोटे हैं। कहा अच्छा ऐसा है, लाओ जरा स्नान करा दे इनको। पता नहीं बेटा तूने कब से स्नान कराया है नहीं कराया है। तो भैया एक गिलास में जल ले आया, गुरुजी ने सोचा, ने डाला जामुन के ऊपर जल, कहा हर हर गंगे हर हर गंगे। फिर मन में भावना आ गई गुरुजी के, पता नहीं इस चेले ने कब से स्नान नहीं कराया, कितना मैल जम गया हो, लाओ जरा अंगूठे से रगड़ रगड़ के साफ कर दें, और जब साफ कर देंगे तो मैल साफ हो जाएगा। एक हाथ में जल लिया, दूसरे हाथ में वो नकली शालिग्राम लिए और जैसे ही कहा हर हर गंगे और रगड़ा भैया पुत्तूलाल, जैसे ही रगड़ा क्या हुआ, गुठली ऊपर गूदा नीचे। गुरुजी घबरा गए, कहा बेटा चेला ये क्या है। तो चेला क्या कहता है, ये नहीं कहता है शालिग्राम बेच कर खा गए, क्या कहता भैया रामशरण जी अभिलाख सिंह जी, जवाब देता है गुरुजी हमारा कोई दोष नहीं, हमारी कोई गलती नहीं, इसमें सब गलती आपकी है। कहा क्यों, कहा जाड़ा हो बरसात हो, खुद नहाओ चाहे ना नहाओ, शालिग्राम को हर हर गंगे हर हर गंगे। आखिर शालिग्राम को भी तो ठंडक लगती है ना। अरे पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, नित नित चंदन नित नित पानी। अरे गुरुजी कहाँ चेला, का तुमरे शालिग्राम गल गे तो हम का जानी। बताओ भैया ऐसे ऐसे होनहार शिष्य होंगे तो कैसे काम चलेगा। महाराज मतंग ऋषि के आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे और गुरु की आज्ञा का पालन किया करते थे। इधर भैया एक भीलनी थी सबरी नाम की, उसको किसी ने बता दिया कि अगर तुम राम की प्राप्ति करना चाहती हो तो सुनो, तुम संतों की सेवा करो, संतों का साथ करो, संतों की खूब सेवा करो, जितना सेवा कर सकती हो, संतों की सेवा करने से ही तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे, तुम्हें प्रभु राम के दर्शन मिल जाएंगे। आज उसने विचार किया कि भाई हम संतों की सेवा कैसे करें, क्योंकि हम सामने एक दिन गई चेलों से कहा भैया तुम लोग जो ये काम कर रहे हो ये हमको कर लेने दो। चेलों ने कहा हट, गुरु की सेवा का अवसर हम तुझको दे दें, ऐसा नहीं हो सकता, भाग जा वरना गुरुजी नाराज हो जाएंगे, अगर इस आश्रम में दिखाई पड़ गई ये सबरी तो समझ ले उठा के तुझे बाहर फेंक देंगे। अब बेचारी सिवरी के मन में तो एक ही टेक है, एक ही लगन है, जब संतों की सेवा करूंगी तब मुझे राम की प्राप्ति होगी। लेकिन संतों की सेवा कैसे? देखिए हम लोग आरती भी गाते हैं, आरती में गाते हैं, बार बार गाते हैं कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हे ईश्वर संतों की सेवा। आरती में भी कहा जाता है हे नाथ हमारे हृदय में श्रद्धा भरो ताकि हम संतों का साथ कर सकें। लेकिन आजकल संतों का साथ कैसे किया जाता है? लोग संतों की सेवा कैसे करते हैं? जैसे आजकल करते हैं ऐसे संतों की सेवा नहीं होनी चाहिए। एक नाव में दो सन्यासी बैठे जा रहे थे। सन्यासी तो आप जानते हैं दंडी स्वामी पत्रकार भैया कि वो हाथ में अपना दंड लिए होते हैं, सर पे उनके बाल तो होते नहीं है सफाचक। और उसी में दो तीन स्कूल के पढ़ने वाले लड़के बैठे थे। तो दो तीन जब स्कूली बच्चे बैठे थे उनको कुछ मजाक सूझी। एक ने कहा यार कुछ गाना बजाना हो जाए। दूसरा बोला भैया गाना बजाना काहे से होगा, यहाँ कोई ना ढोलक है न तबला है, का गाने बजाने के लिए ढोलक चाहिए तबला चाहिए भैया पुतुलाल का, जब तबला बजेगा तभी तो गाना बजाना होगा। तो तीसरा बोला भैया हारमोनियम तो नहीं है, तबले का जुगाड़ हो जाएगा। कहा भाई कहाँ है तबला? तब वो देख सामने दो सन्यासी बैठे हैं ना, उनकी तरफ इशारा किया, उनकी चांद को देख बिल्कुल सफा चट है, एक का टमाटम बना ले एक का घमा घम बना ले, बजा ले तबला भैया बजा ले। मेरे श्रोता बंधुओं जरा विचार करो, आरती में कहा जाए संतों की सेवा करो और वहां नाव में कहते हैं कि संतों का तबला बनाओ, ये कैसी सेवा हुई? लेकिन सिवरी दीवानी है, कैसे करूं संतों की सेवा? जब तक संतों की सेवा नहीं होगी तब तक मुझे प्रभु के दर्शन कैसे मिलेंगे, मेरे राम मुझे कैसे मिलेंगे? इसलिए क्या करती है सवरी निशिवासर में उठकर संतों की सेवा करने लगी। और नाथ नाथ हा राम राम मिलने की धुन में रटने लगी। आज उसने सोचा कि जब ये शिष्य लोग सवेरे उठ नहीं पाएंगे इनसे पहले ही मैं सेवा कराऊंगी, बस जब ये जगेंगे तब मेरी सेवा हो चुकी होगी भैया। तो रात को ही उठ जाती और रात को उठकर सारा झाड़ू लगा आती संतों के आश्रम में, बुहारू कराती, झाड़ू लगा करके और जानते हो भैया क्या करती, घरों में पानी भर आती, महात्माओं के कपड़े धो आती। जब सवेरा होता और संत लोग देखते चेले देखते पानी भरा हुआ है, सारा झाड़ू लगा हुआ है, कपड़े साफ हैं, हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठा हैं, बड़ा चक्कर में पड़ जाते कि यार कौन ऐसा आदमी है जो चुपके से आता है और ये आश्रम की सारी सेवा कर जाता है, और भैया हम लोग ऐसे कैसे रह जाते हैं? पकड़ना चाहिए। जब बहुत दिन हो गए मन में सोचा चुप करके पकड़ना चाहिए और पकड़ करके उसको गुरुजी के पास ले चलेंगे, वो चोरी से सेवा करता है। एक रोज सारे शिष्य छिपकर बैठ गए। बेचारी वो राम दीवानी सबरी को क्या मालूम, जैसे ही वो रात को गई सेवा करने बस वैसे ही पकड़ लिया ऋषियों ने और पकड़कर मतंग ऋषि के पास ले गए। सवरी कहती है छोड़ दो बाबा छोड़ दो बाबा, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे सेवा करने दो, मुझे संतों की सेवा करने दो। मतंग ऋषि ने कहा, बालको क्या बात है? कहा, गुरुदेव ये भीलनी आती है और हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं, ये रात ही रात में सारी इस आश्रम की सेवा कर जाती है, हवन सांह के लिए लकड़ियां तोड़कर रख जाती है, झाड़ू लगा जाती है, जल की व्यवस्था कर जाती है, यहां तक गुरुदेव सारे वस्त्र भी धो जाती है। मतंग ऋषि को आज दया आ गई, सबरी को बड़े प्रेम से पास में बिठाया, उसके सर पे आशीर्वाद रूपी हाथ फेरा और कहने लगे, ए बेटी क्या बात है, इतना तो बताओ तुमने ये ऐसा भेष क्यों बनाया और आखिर चोरी से आश्रम की सेवा क्यों कर जाती हो? सबरी कहने लगी, बाबा मैं दिन में कई बार आई, मुझे बड़े बड़े महान भावों से ये मालूम पड़ा है कि जब मैं संतों की सेवा करूंगी तब मेरे राम, तब मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे और हृदय में मेरे ये बहुत बड़ी अभिलाषा है कि मैं अपने प्रभु राम के दर्शन करूं। बस इसी लालसा से कि संतों की सेवा से मुझे प्रभु राम के दर्शन होंगे, तो मैंने सोचा कि ये लोग मुझे ऐसे तो सेवा करने नहीं देंगे, तो मैं छुप के रात में सेवा कर जाया करूंगी। संत को दया आ गई, संत हृदय नव नीत समाना, सुनी संत तब लागी दाया, पलट दई सब रीति काया, सुनी संत तब लागी दाया, पलट दई सब रीति काया। अरे आज मतंग ऋषि कहने लगे, अरे सियुरी क्या तुझे मालूम नहीं, अरे प्रभु तो हमेशा अपने भक्तों के बस में होते हैं, अगर तेरे हृदय में ये विचार है, तेरी ये लालसा है, तो जा तेरी सेवा पूरी हुई, तूने बहुत सेवा कर ली, ये मेरा आशीर्वाद है बेटी कि जा, तुझे एक दिन तेरे प्रभु अवश्य मिल जाएंगे, यहाँ पड़ोस में ही अपनी कुटिया बना ले, इसी कुटिया में राम राम का भजन, और ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा वरदान है, एक दिन इसी रास्ते से जहां तू कुटिया बनाएगी, इसी रास्ते से तेरे प्यारे राम अपने भाई लक्ष्मण के समेत आएंगे और तुझको दर्शन देंगे, तुझको मिलेंगे, ये मेरा वरदान है, ये मेरा आशीर्वाद है। और इतना कहकर आज कुटिया बनवा दी अपने आश्रम के बगल में ही मतंग ऋषि ने, और उस कुटिया में बैठकर सबरी रात दिन प्रभु का ध्यान करती है और प्रभु का भजन करती है, उनकी याद में उनका इंतजार करती है, बैठी हुई है। और सज्जनों और क्या होता है, ऐसे नहीं बैठती,
Mm-hmm.